الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام ناظرين الكرام سلسلہ ہمارا احکام تجارت قال دیجئے گا مجھے اس کے بعد پھر سلسلہ کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور آڈینس کے بھی سوالات لیتے ہیں
پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بزنس شروع کیا ہے کہ عمرہ کروانا ہے تو جو اس کے لوگوں کو اس کی ادائیگی وہ قسطوں میں کریں گے جتنے پیسوں میں عمرہ ہوگا اس کی ادائیگی قسطوں میں کریں گے پر منتھ 2500 روپے قسط کیا یہ جائز ہے
دیکھیے عمرے کا پیکج جو ہے ایک سروس ہے بنیادی طور پر اور اس سروس کے اندر ہوٹل کا کرایہ اور دیگر جو کرایہ جات ہیں وہ شامل ہوتے ہیں تو کرایہ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ مالک چاہے تو ایڈوانس پیسے لے لے سارے چاہے تو وہ جیسے جیسے سروس استعمال کیے ویسے ویسے لیتا رہے اور اگر وہ ادھار لینا چاہ رہا ہے بہت بعد میں لینا چاہ رہا ہے تو بلا شبہ اس کی بھی گنجائش ہے اور بلا شبہ لیا جا سکتا ہے لیکن عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات عمرے کے نام پر بڑی عجیب و غریب قسم کی جو اسکیمز ہیں وہ مقرر کر دی جاتی ہیں اور ان اسکیمز کی وجہ سے کچھ چیزوں میں خرابی آتی ہیں اور وہ جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر جو معاملات ہیں وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں تو ایسی کوئی اسکیم نہیں ہونی چاہیے کوئی شرعی خرابی خارجی اعتبار سے نہیں پائی جاتی تو کوئی حرج نہیں ہے ہمارے مہروز بھائی آ چکے ہیں
ناظرین کے لیے بڑا انوکھا سلسلہ یوں ہے کہ ویسے تو مفتی صاحب کا ہی سلسلہ ہے اور مفتی صاحب جوابات ارشاد فرماتے ہیں تو ہی یہ سلسلہ ہو پاتا ہے لیکن آج کی خصوصیت یہ بہت عرصے کے بعد ایک دفعہ بہت عرصے پہلے ایک سلسلہ تھا جو مفتی صاحب نے شروع کیا تھا اور آج بھی جو ابتدا ہے وہ مفتی صاحب نے کی ہے اور آج ہمارے ساتھ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بہت سارے تاجران بھی موجود ہیں دعوت اسلامی کی جو مجلس تاجران ہیں اس کے تحت مفتی صاحب کا پنجاب کا کچھ جدول بنا چند شہروں کا اور تاجر اجتماع ہوئے اور اس حوالے سے پہلے میں پوچھتا ہوں مفتی صاحب کیسی کیفیت رہی کیسی صورتحال رہی کیسا محسوس کیا آپ نے
دیکھیے سفر در سفر در سفر سلسلہ جاری رہا اور اس پورے سلسلے کے اندر مجلس تاجران نے بڑی ہی گرم جوشی کے ساتھ کام کیا اور سردار آباد کا جو ہمارا اجتماع ہوا ہے تو وہاں کرسیاں بھر چکی تھیں اور لوگ پیچھے کھڑے ہوئے تھے
کافی بڑی ہیوج جو ہے وہ
اور اپنے وقت سے کافی آگے سلسلہ چلا گیا تھا لیکن اس کے باوجود الحمدللہ لوگ اٹھے نہیں تو یہ ایک حوصلہ افزا بات تھی اور جو ہمارا اکاڑا میں ہوا سلسلہ تو وہ تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ لوگ آج گیٹ پر کھڑے ہو جائیں گے
جی
اور مجھے نکلنے نہیں دیں گے
آپ نے اعلان بھی کر دیا تھا
ٹھیک ہے یعنی ایک تو وہ بیان ہوا جو ہمارا طے شدہ موضوع تھا کاروباری تنازعات اور ان کا حل
جی
پورا وہ بیان تھا
ٹھیک ہے
پریزنٹیشن نہیں تھی اور اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے تو بہت سارے اور مسائل ہیں
جی
اور بھی تصے دس کے جانا ہے
جی جی آپ کو روک لیا گیا
جان لے دینا ہے باقاعدہ گلہ منڈی کے صدر کھڑے ہو گئے کہ جی ہمارے مسئلے حل کرنے ہیں اور بہت سارے لوگ بیٹھ گئے تو دو گھنٹے کا بیان اور اس کے بعد پھر کچھ مزید دو ڈھائی گھنٹے الگ سے سوال جواب کا سلسلہ جاری رہا
جی
تو بہرحال مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے
اور
ایک تو مارکیٹ سیکھنے کو ملی ہے
جی
کہ جو بہت ساری نئی چیزیں ہیں بہت ساری نئی چیزیں
اچھا مجھ سے آپ کا مین جدول تو یہی تھا کہ تاجر اجتماعات یا مسائل تجارت سیمینار کے عنوان سے جو آپ نے دو جگہ کیا اور کاڑا میں اور سردار آباد میں ہماری مدنی اصطلاح میں جسے سردار آباد کہتے ہیں یعنی فیصل آباد میں اور آپ کا اس کے ساتھ ساتھ جامعۃ المدینہ کا بھی جدول رہا یہاں میں چاہوں گا کہ آپ کا مین جدول تو تھا تاجرات کے ساتھ تاجر اجتماع کے حوالے سے مسائل تجارت سیمینار کے حوالے سے لیکن آپ نے خصوصی شفقت کرتے ہوئے جامعات المدینہ کو سردار آباد میں بھی اور پھر اوکاڑا میں بھی وقت عنایت فرمایا بلکہ اوکاڑا میں تو دو دن آپ تشریف لے گئے تو اس کی کیا وجہ تھی کیا نیت تھی کیا مقاصد تھے
देखिए, तलबा जो है वो मुस्तकबिल के उलमा है, मुस्तकबिल का सरमाया है,
सही
और बुनियादी तौर पर जो मेरे रुमानात थे वो ये थे कि इल्म फिक के अंदर महारत कैसे पैदा हो और फिकी जोक कैसा पैदा हो।
ठीक
तो अब मेरा हदफ ये था कि अगर आज ये बेहतर अंदाज में पढ़ लेंगे
जी
और इनके सामने नए जावी और नए एंगल्स आएंगे और ये डिफरेंट जिहाद से अगर सोचेंगे तो इनके लिए फायदेमंद होगा।
ठीक है मुफ्ती साहब,
एक तालिबे ने मुझसे सवाल भी किया कि बाज़ औक़ात इस तरह की तरगीबी बातें जो मिलती हैं बंदा सुस्त हो जाता है, अमल नहीं कर पाता।
बिल्कुल
मैंने अर्ज किया कि अमल करना एक जुदागाना चीज है,
ठीक, वो एक खुद एक कैफियत
मतलब तरगीबी बातों में अमल के फवायद ही फवायद है,
है। ठीक
लेकिन अगर कोई अमल नहीं भी करता बिलफर्ज, क्योंकि
जी
वाजिबात तो जो है नहीं वो चीज है,
जी
एक फायदा यह होगा कि उसे उसके सामने एक विजन आ जाएगा
ठीक है
और वो डिफरेंट विजन के साथ सोचेगा।
ठीक है। ये जामेतुल मदीना के हवाले से आप इरशाद फरमा रहे हैं कि मुफ्ती साहब ने जैसा फरमाया कि अमल एक जुदागाना कैफियत का नाम है, एक जुदागाना चीज है, इसके साथ साथ एक चीज है विजन, आपका विजन बड़ा हो जाए, आप विजनरी हो जाए, एक आपकी जो देखने की सलाहियत है वो एक बड़ी स्क्रीन पे चीजों को देखना शुरू कर दे, तो उससे ही होता है आपने सोचने समझने और फिर अमल करने की, आगे जिंदगी में अचीवमेंट लेने की, गोल अचीव करने की सलाहियत आपकी बढ़ जाती है। मुझसे अब यही आपने विश्वास फरमाया। अच्छा मुझसे अब आज बातें तो बहुत सारी हैं, यकीन आज का पूरा सिलसिला आपके जदवल पर ही हो सकता है, और कुछ ऐसी भी चीजें मैंने मुलाहिजा की हैं जदवल में जो हमारे मुफ्ती साहब के जदवल का बकायदा सिलसिला हिस्सा नहीं थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि एक आलिम दीन जो होता है, मुफ्ती इस्लाम जो होता है, जब वो इस्लाम की तालीमात को सीखता है और फिर वो उस फन में महारत हासिल करने के बाद अल्लाह ताला उसे वो मकाम देता है कि वो दूसरों को सिखा रहा होता है, तो फिर उसके अमल की कैफियत क्या होती है, उसके सोचने की समझने की सलाहियतें कैसे निखरती हैं वो भी दिखी हैं, और यकीनन मैंने अर्ज किया जैसे कि ये पूरा सिलसिला इस पे हो सकता है, लेकिन बहरहाल अहकाम तिजारत है और हमारे सामने बहुत सारे ताजिरान है, और मुफ्ती साहब ने उकाड़ा का जो है सूरत हाल आपके सामने रखी है कि ताजिरान ने गोया कि मोहब्बत के अंदाज में बिठा लिया था कि जी जब तक हमारे मसाइल के जवाब सारों के नहीं मिल जाते तो गोया कि नहीं जाने देंगे, तो ताजिर इस्लाम भाई बैठे हुए हैं, इनसे भी कुछ सवालात लेने हैं, तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आप में से कोई इस्लाम भाई जो सवाल करना चाहें।
मेरा नाम मोहम्मद शफीक चौधरी है, मेरा तल्लक एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट से है।
ठीक,
मेरा मुझसे किबला मुझसे सबसे सवाल है कि परचेज मैनेजर का टाइप लेना कैसा है।
मुझसे अब ये बहुत उमूमी सवाल है, उमूमन जो बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, बड़े कारोबारी इदारे होते हैं, वहाँ पे एक शोबा होता है परचेजिंग का, और उस शोबे के तहत मैनेजर भी होता है, दीगर स्टाफ भी होता है कि जो परचेजिंग का काम करता है। एक हमारा सेल डिपार्टमेंट होता है बड़े तालीमी इदारों में के जहां से जो है वो सेल को देखा जा रहा होता है, सेल कैसे बढ़ानी है, कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है। दूसरा जो शोबा होता है वो परचेजिंग का होता है, और जाहिर सी बात है बड़ा बुनियादी शोबा इस एतबार से कि परचेजिंग होगी तो फिर सेल होगी, मार्केटिंग होगी। तो अब इसमें जब खरीदारी करनी होती है तो सेल्स मैनेजर को मुख्तलिफ कंपनीज, मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ दुकानदार ऑफर्स करते हैं, छोटे बड़े इदारे जैसे होते हैं वो वैसी ऑफर्स करते हैं कि जनाब आप इतने पैसे ले लें या ये गिफ्ट ले लें, मोबाइल फोन ले लें, गाड़ी ले लें, एसी ले लें, एक्स वाई जेड छोटे बड़े गिफ्ट्स की उन्हें ऑफर करते हैं। तो किसी तिजारती कंपनी के सेल्स मैनेजर का उस इदारे से जहां से वो परचेजिंग कर रहा है गिफ्ट लेना कैसा?
देखिए, बहुत सारे मौके ऐसे हैं जहां चीजों को गिफ्ट का नाम दिया जाता है।
ठीक है,
देखना ये होता है कि शरीयत की तालीमात की रोशनी में ये गिफ्ट है या नहीं।
ठीक,
मिसाल के तौर पर हमारा जो डॉक्टर है मेडिकल रेप वाले से गिफ्ट देते हैं।
ठीक,
कि जी आपको मलेशिया का टूर देंगे, आपको हम एसी देंगे,
ठीक है,
फ्री देंगे, आप बस दवाइयां हमारे लिए दें।
ठीक, हमारी कंपनी की दवाइयां लिखें
और किसी कंपनी की ना लिखें।
ठीक,
अब डॉक्टर उनके लिए सर्विस नहीं कर रहा है, उनके लिए सर्विस ना करने के बावजूद उसे वो गिफ्ट दिए जाते हैं।
ठीक है,
सर्विस तो उसकी मरीज के लिए है।
ठीक है,
मरीज के लिए वो सर्विस अंजाम दे रहा है, मरीज को फीस लेकर और मुंह मांगी फीस लेकर, यानी
खिदमत का सिला ले रहा है वो मरीज।
दुनिया की शायद हर चीज में बार्गेनिंग हो जाए
जी,
डॉक्टर से कोई भी बार्गेनिंग नहीं करता होगा
जी, ऐसे ही तकरीबन ऐसे ही
मुंह मांगी फीस लेकर वो अपनी तजवीज देता है आप ये दवाइयां इस्तेमाल करें
जी।
तो अब उन तहाइफ की वजह से वो डॉक्टर महंगी दवाइयां लिखता है, 50 रुपए की दवाई काफी है तो 500 की भी लिखता है। सब डॉक्टर जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसा भी करते हैं। लेकिन अलल अमूम जो तहाइफ लिए जाते हैं वो रिश्वत के हुक्म में है, वो मतलब के कंपनियों के मफादात है उसके पेशे में दिए जाते हैं। इसी तरीके से जो परचेजर है, अब परचेजर इस दुकान से माल खरीदे, इससे ना खरीदे, इसकी बुनियाद पर उसे लोग तहाइफ देते हैं कि ये हमारी दुकान से ही खरीदे, दूसरी दुकान से ना खरीदे। भाई वो तो कंपनी का मुलाजिम है, कंपनी उसको तनख्वाह देती है इस बात की कि वो जाकर बेहतर चीज खरीद कर लेकर आए। अब यही वजह बनती है कि यहां अगर नाकिस भी मिल रही होगी तो वो लेगा, बराबर वाली दुकान या मार्केट में सस्ती भी मिल रही होगी वो वहां से नहीं लेगा, वो यहीं से लेगा।
ठीक,
क्यों? उसे वहां से
मुनाफा
मिल रहा है, के नाम पर रिश्वत मिलती है।
ठीक है, तो ये गिफ्ट नहीं है, रिश्वत है।
रिश्वत ही।
ठीक है,
और यहीं से जो मालिकान है
जी,
जिनका वो मुलाजिम है, जिनसे वो तनख्वाह लेता है, उनके साथ वो खयानत कर रहा होता है।
अल्लाह,
तो ये तरीकाकार बिलाशुबा गैर शरई है।
ठीक है, मतलब इसका गिफ्ट का नाम दे, मिठाई का नाम दे, एक्स वाई जेड जैसे आपने फरमा दिया, ये रिश्वत है और नाजायज हो, जहन्नम में ले आने वाला काम है, इससे हमें बचना चाहिए। जो परचेजिंग के शोबे में अल्लाह ताला आपको इस्तेकामत दे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल पे तवक्कुल रखिए, आपकी जो जायज आमदनी है उस पर भरोसा कीजिए, अल्लाह ताला उसी में बरकत डाल देगा। इन चीजों से बचने की कोशिश की। अगला सवाल कोई इस्लाम भाई करना चाहें।
मैं आबिद हुसैन।
जी आबिद,
मेरा काम है शादी हॉल का बिजनेस है।
ठीक है,
मैं सवाल करना चाहता था कि ये हम अपने मुलाजमीन को ज़कात दे सकते हैं?
ठीक है, तशरीफ रखिए। मुझसे भी ये जो सूरत है बयान करी, थोड़ा सा और एक्सप्लेन में कर दूं कि बाज़ुकात ये होता है मुख्तलिफ कंपनीज में, इदारों में, कारोबारी हवाले से बिलखसूस मुलाजमीन की मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, कुछ हाई लेवल पे होते हैं, कुछ लो लेवल पर होते हैं। जो लो लेवल पर मुलाजमीन होते हैं उनकी तनख्वाहें बड़ी महदूद होती हैं और बड़ी यूं के लिए हैंड टू माउथ होते हैं, उनकी तंगदस्ती का मालिकान को एहसास होता है। तो बिलखसूस जैसा कि हमारे उर्फ में, एशिया के, पाकिस्तान के उर्फ में ये कि रमजान शरीफ में खसूसियत के साथ सदका और खैरात करते हैं और ज़कात भी निकालते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम इस सदका और खैरात और ज़कात में से अपने जो मुलाजिमीन हैं उनको भी कुछ दे दें ताकि उनका भला हो जाए, या उनके यहाँ कोई तकरीब आ गई है शादी वगैरह की। तो
अगर मुलाजिमीन के साथ ये तय कर रखा है कि सालाना बोनस उन्हें दिया जाएगा
जी,
अगर ये तय कर रखा है,
ठीक है,
और फिर ख्याल आया कि उन्हें ज़कात दे दी जाए,
ठीक है,
तो वो सालाना बोनस तो सैलरी के तौर पर तय कर रखा है,
ठीक,
तो वो ज़कात से नहीं दिया जा सकता।
ठीक है, वो ज़कात से नहीं दिया
जा सकता। ज़कात जहाँ देनी है वहां आपका कोई मफाद नहीं होना चाहिए,
ठीक,
उस मौके पर ज़कात देनी है,
ठीक, कोई मनफियत ना हो हमारी,
मतलब पहले से तय शुदा अगर वो वाजिबुल अदा पैसे हैं
जी
तो वो तो आपको देने देने हैं,
ठीक है,
ज़कात तो उसका हिस्सा नहीं बन सकती।
सही।
दूसरी बात यह है कि ज़कात के लिए सबसे पहले करीबी रिश्तेदार,
ठीक,
आस पड़ोस,
ठीक,
और उसके बाद जो हम पेशा लोग हैं, जो हम पेशा लोग हैं, किताबों में लिखा है कि उसका तीसरा चौथा नंबर आता है,
ठीक,
तो इनके जो मुलाजमीन है वो हम पेशा लोग एक तरह,
सही,
ठीक है, ये मालिक है वो मुलाजमीन है,
ठीक, दर्जे का फर्क।
लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि शरीयत की तालीमात की हिकमत देखें आप
जी,
करीब रिश्तेदार और आस पड़ोस, हम पेशा लोग, क्योंकि हर आदमी पर एक पर्दा होता है, उसके हालात से कोई वाकिफ नहीं होता, लेकिन जो हमारे रिश्तेदार हैं हम उनके हालात जान रहे होते हैं,
बिल्कुल ऐसा,
जो हमारे साथ काम करते हैं या जो हमारे मुलाजमीन हैं हमें उनके हालात पता होते हैं, तो इसलिए ज्यादा ताकीद है अगर वो मुस्तहिक ज़कात हैं उन्हें ज़कात दी जाए, लेकिन किसी किस्म की पहले से वाजिबुल अदा अदायगी की मद में ना दी जाए कि आप सोचें बोनस बच जाएगा चलो ज़कात दे देते हैं, नहीं,
ठीक है,
ज़कात एक जुदागाना चीज है,
ठीक,
अब एक और चीज भी है,
ठीक,
कि ज़कात तो अदा हो जाएगी
जी
लेकिन सवाब नहीं मिलेगा।
अल्लाह,
वो क्या है, अगर कोई ये नियत करता है कि जनाब चलो ये मुलाजिम जरा टिक कर रहेगा,
सही,
या ये मासी जो है बार बार पैसे मांगती रहती है उसको फला मौके पर ज़कात दे दूंगा,
ठीक है,
और जो है वो अच्छी तरह काम करेगी,
ठीक,
ज़कात देते वक्त अल्लाह की रजामंदी की नियत करनी है
जी,
और ये नियत नहीं करनी कि जनाब आप अपने किसी जाती मफाद की वजह से दे रहे हैं,
ठीक,
अल्लाह ताला की रजा के लिए देनी,
ठीक। तो मालूम ये हुआ कि जब जहाँ पे जो है वो जैसे कि आपने तफसील बयान करी, खुलासा करना नहीं चाहूंगा मैं, बल्कि अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि मुफ्ती साहब ही का काम है खुलासा करना भी। अगला सवाल कोई इस्लाम भाई।
मुफ्ती साहब से क्वेश्चन ये है कि ताजिर तिजारत के मसाइल कैसे सीखे।
ठीक है जी, मतलब ये एक बड़ा उमूमी सवाल है, आपको इसका सामना रहता है किसी न किसी सूरत में, कि ताजिरान की बाज़ुकात कैफियत बनती है कि जी तिजारत के मसाइल तो सीखने चाहिए, लेकिन अब वो आपने जैसे इरशाद फरमाया कि इतना आसान नहीं है, अब वो जब सीखना चाहते हैं तो मुश्किलात आती हैं, कैसे सीखें।
पहले तो जहन में ये बात बिठाई जाए कि तिजारत बहुत वसी मौजू है।
ठीक है,
शरीयत ये कहती है कि ताजिर को तिजारत पर PhD करने की जरूरत नहीं है, कि वो तिजारत का एक एक मसला सीखे ये कुछ जरूरी हो। एक शख्स जो तिजारत करता है 12-15 चीजें होती हैं उसके साथ। कपड़ा मार्केट में जरा अलग तरीके से लेन देन होता है
जी,
इनके उधार नकद के अलग मामला होते हैं
जी,
अनाज मंडी तो बिल्कुल ही अलग है।
ठीक है,
इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग का जो निजाम है इसके डिफरेंट चीजें हैं।
ठीक,
इसमें आप सप्लायर से रुजू करते हैं, माल खरीदते हैं, पार्टी को बनाकर देते हैं, लेबर्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं। आप जिस शोबे से वाबिस्ता है आपका करेक्टर क्या है।
ठीक है,
आप हैं क्या।
ठीक है,
मैन्युफैक्चरर है।
ठीक है,
ब्रोकर है, बेचते हैं, होलसेलर है, एक्सपोर्टर है, इम्पोर्टर है। हर चीज के एतबार से मैं समझता हूँ 12-15 चीजें ऐसी होंगी
बुनियादी तौर पर
जो हर ताजिर को सीखनी होंगी।
ठीक है,
कोई इतना मुश्किल काम नहीं है।
सही,
लेकिन हर शख्स की फील्ड के एतबार से उसकी दीनी जरूरतों वाले सवाल अलग हैं।
ठीक है,
कोई शख्स ये चाहेगा कि भाई मेरा रियल एस्टेट का काम है, कमीशन का काम है, तो मेरे ये मसाइल है, तो वो थोड़ी सी चीजों के गर्द मामला घूमेगा।
ठीक,
इसी तरीके से डिफरेंट जो मार्केट्स हैं तो हर मार्केट के अलग अलग सवाल होते हैं।
ठीक,
कोई एक निसाब सबके लिए काफी हो ऐसा नहीं है। तो पहले तो ये जस्तजू और ये नीयत होनी चाहिए कि मैंने सीखना है। जब बंदे की नीयत ये आ जाती है कि मैंने सीखना है
जी,
तो नीयत सच्ची मंजिल आसान।
ठीक है,
उलमा से राबते में रहे, कुछ ना कुछ तिजारत के वाले से सुनता रहे।
ठीक,
हमारा जो ये सिलसिला है अहकाम तिजारत
जी,
मतलब कि एक रिवायत रही है कि हर सिलसिले में
जी
ऐसे सवाल जरूर शामिल होते हैं जो खुद मेरे लिए भी नए होते हैं।
ठीक है, नए सवाल होते हैं। ठीक है, नई जिहाद होती है उस पर सीखने को मिलता है। जैसे मुफ्ती साहब ने तफसील बयान करी, यहाँ पे मैं दो चीजें ऐड करना चाहूंगा कि एक तो जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया ये सिलसिला अहकाम तिजारत है, तो ये देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह रूटीन में रहेगा ना, आप एकदम से सब कुछ सीखना चाहेंगे तो जरा मुश्किल हो जाएगा। वीकली तौर पर आप सीखते रहेंगे, एक एक चीज समझ में आती रहेगी तो आसानी रहेगी। दूसरा, मुफ्ती साहब का एक यूट्यूब चैनल है और दारुस्ता अहले सुन्नत का भी एप्लीकेशन है, उस पर कुछ मुफ्तियाने किराम के, मुफ्ती अली असगर साहब के भी और दीगर के भी लेक्चर्स मौजूद हैं, वहां से वो लेक्चर सुने जाएं। और मुफ्ती साहब ने पिछले साल भी जब लाहौर और गुजरांवाला में इज्तिमात हुए थे, ताजिर इज्तिमात हुए थे, उस पर बड़े तफसीली प्रेजेंटेशन इरशाद फरमाई थी, वो भी मुफ्ती साहब के मुफ्ती अली असगर अत्तारी के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां पे मौजूद है, वो सुने जा सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत आसान बहुत सहल तरीका ये है, दारुस्ता अहले सुन्नत के नंबर्स अपने पास रखिए। आप जैसे लाहौर में हैं तो लाहौर में भी दारुस्ता अहले सुन्नत की दो शाखें हैं, बाबुल मदीना कराची में भी है, पिंडी में भी है, दीगर बहुत से जगहों पर हैं, तो आप इन उलमा इकराम से मरबूत हो जाइए, राबते में आ जाइए। जो मसला आपकी फील्ड का होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ावजल, जैसे मुझसे आपने फरमाया चंद बुनियादी मसाइल सीख लेंगे तो आसानी रहेगी, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। एक कॉल शामिल कर लेते हैं और फिर आपकी तरफ आते हैं जी, पहली कॉल दीजिए।
मैं एक जगह नौकरी करता हूँ, तो उस नौकरी में ना मुझे छोटे कंफ्यूजन है कि वहाँ जो लोग रहते हैं जिनके पास मैं काम करता हूँ वो जिनके शराब पीते हैं, तो उनको उठा के देना या उनसे लेके रख देना, इसमें मेरे लिए क्या शरीय हुक्म है कि मैं ये कर सकता हूँ या नौकरी चेंज कर लूँ या क्या, इसका मसला मुझे अभी अगर बता दू।
ठीक है जी, मतलब ये जहाँ काम करते हैं वहाँ पे लोग शराब पीते हैं, तो उनको शराब उठा के देना या रखना लेकर, इसके बारे में कंफ्यूज है क्या करें।
बेचने वाले, शराब की नकलो हमल करने वाले, उठाकर देने वाले, इन सब की ममानत बैन की गई है।
ठीक,
तो ये काम तो इनका जायज नहीं है, गुनाह पर मामलत का काम है।
ठीक है, मुस्तफा अगर किसी शख्स की जॉब तो कुछ और हो, यानी जॉब तो उसकी किसी और शोबे से रिलेटेड है, ये काम नहीं करता वो, لیکن اس کا باس یا دیگر افراد اسے کہتے ہیں تو جب بھی اس کے لیے یہی حکم ہوگا ٹھیک ہے جی. آپ میں سے کسی اسلام بھائی کا کوئی سوال؟
میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے کیا احتیاط کرنی چاہیے؟
انویسٹمنٹ کرتے ہوئے کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دین محمد بھائی بہت مختصر سا سوال کیا آپ نے, لیکن جواب تو مفتی صاحب دیں گے لیکن مجھے اندازہ ہو رہا ہے کافی بڑا جواب اس کا.
دیر آر ٹو کائنڈس آف انویسٹمنٹ, دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں مداربت, کہ آپ کے پیسے ہیں اور سامنے والے کی صرف محنت ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ کے بھی پیسے ہیں اور اس کے بھی پیسے ہیں, اس کو کہتے ہیں شراکت.
ٹھیک ہے,
پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ مداربت. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت فرمائی, پارٹنرشپ بھی فرمائی, مداربت بھی فرمائی. آپ جو ملک شام تشریف لے گئے تھے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو شراکت ہوئی تھی, علماء نے لکھا کہ وہ مداربت تھی.
ٹھیک,
یعنی انویسٹر جو ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی, اور اسی پر انہوں نے دیکھا کہ انتہائی امین ہیں, پرہیزگار ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ آپ کے نکاح میں آئی.
ٹھیک,
سب سے پہلے تو اس کی دو قسمیں ہیں انویسٹمنٹ کی, اور دونوں کے اصول و ضوابط الگ الگ ہیں.
ٹھیک,
نفع نقصان کے معاملات الگ الگ ہیں.
ٹھیک,
مثال کے طور پر پارٹنرشپ جب دونوں کے پیسے ہوتے ہیں, اگرچہ کم زیادہ ہوں, اس کا اصول یہ ہے کہ جب بھی نقصان آئے گا ایز پر کیپٹل آئے گا.
ٹھیک,
مداربت کے اندر نقصان تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹر کو برداشت کرنا پڑتا ہے.
ٹھیک,
اگرچہ کہ وہ جو ورکنگ پارٹنر ہے اس نقصان کو ریکور کرنے کے مراحل پر وہ کام کرے گا.
ٹھیک ہے,
لیکن اس پر براہ راست جو ہے وہ نقصان آئے ایسا نہیں ہے.
ٹھیک,
پھر اس کی اور بہت ساری صورتیں ہیں.
ٹھیک ہے,
اس کی ڈیٹیل میرے دو لیکچر موجود ہیں, دارالافتاء اہل سنت کی جو اپلیکیشن ہے
جی
اس پر وہ موجود ہیں.
ٹھیک,
کہ شرکت کیا ہوتی ہے, اس کے اصول و ضوابط, مداربت کیا ہوتی ہے, اس کے اصول و ضوابط وہاں سے سیکھے جا سکتے ہیں. دو تین باتیں میں اور عرض کر دوں کہ عام طور پر انویسٹمنٹ میں غلطی کہاں ہوتی ہے. انویسٹر گیا کسی شخص کے پاس, جی آپ کس بنیاد پر مجھے نفع دیں گے, بس مل جائیں گے آپ کو, مل جائیں گے آپ بے فکر رہیں.
ٹھیک,
اندازاً 20-22,000 روپے دے دوں گا.
ٹھیک,
ہونا ہی چاہیے کہ وہ جو بھی موڈ آف ٹریڈنگ ہے شریعت کے مطابق اس کو اختیار کرے, گروتھ کتنی ہو رہی ہے اس کا حساب کرے, اور جو ریالٹی ہے اس کو بیس بنا کر نفع نکالے.
ٹھیک ہے,
ہوتا ہے تو دے ورنہ نہ دے.
ٹھیک,
لیکن یہاں تو پہلے سے طے کر لیتے ہیں ہم نے دینا ہی دینا ہے آپ کو جناب,
صحیح, منافع ہی دینا ہے,
منافع ہی دینا ہے.
ٹھیک ہے,
ہو یا نہ ہو.
ٹھیک ہے,
دل میں اگر تھوڑی سی شک و شبہ پیدا ہو رہا ہو اور ضمیر جو ہے وہ
ملامت
جھنجھڑ رہا ہو تو یہ کر لیں گے کہ کبھی 2,000 کم دے دیے, کبھی 2,000 زیادہ دے دیے.
جی وہ کمی بیشی کے ساتھ دے رہے ہیں, فکس نہیں کیا ہوا,
یہ بھی جو ہے وہ صرف دل کو منانے والی بات ہے.
ٹھیک ہے,
ریالٹی بیسڈ ہے.
ٹھیک,
کہ حساب کریں.
ٹھیک,
جب آپ کسی کو ساتھ ملا رہے ہیں تو حساب سے کیوں بری ذمہ ہو جاتے ہیں,
یعنی کلوزنگ کرنی ہوگی.
کلوزنگ کرنی ہوگی.
ٹھیک,
اسٹارٹ کے وقت بھی اور اس کے بعد بھی.
ٹھیک,
اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, انویسٹمنٹ لے لیتے ہیں.
ٹھیک,
اس سے کاروبار کرنے کے بجائے اپنے قرضے اتار دیتے ہیں, اپنی ادھاریاں چکا دیتے ہیں اور اس کو لمسم دے رہے ہوتے ہیں نفع, تو سود ہے.
ٹھیک,
آپ نے کاروبار میں تو اس کی رقم لگائی نہیں ہے. تو انویسٹمنٹ کا نام نہیں ہونا چاہیے, حقیقی بنیادوں پر ہونی چاہیے. اور بھی بہت سارے اس کی ڈیٹیل ہے, فی الحال مختصر اتنا ہی کافی ہے.
ٹھیک ہے جی, آپ کو کچھ جواب مل گیا اور کچھ جیسے کہ عرض کیا یہ کام کرنا ہے آپ نے. جی آپ میں سے کوئی اور سوال کرنا چاہے اسلام بھائی؟
میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ایک بندہ کاروبار میں پیسے لگاتا ہے اور دوسرا محنت کرتا ہے, تو اس میں زکات کون ادا کرے گا؟
ایک پیسے لگا رہا ہے اور دوسرا
محنت کر رہا ہے.
محنت کر رہا ہے,
لیکن کیپٹل والے کا تو کیپٹل ہے, وہ کیپٹل کا مالک ہے.
ٹھیک,
اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے.
صحیح,
لیکن وہ کیپٹل جس دن زکات فرض ہو رہی ہے
جی
کس شیپ میں ہے یہ دیکھنا ہوگا.
ٹھیک,
اگر وہ उस शेप में है कि जिन पे ज़कात फर्ज होती है
जी,
तो एक अलग मामला है। मिसाल के तौर पर किसने कहा कि भाई मैं दुकान डालूंगा,
ठीक है,
और इससे माल खरीद कर डालूंगा,
ठीक है,
उसको 10 लाख रुपए दे दिए,
ठीक,
10 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए का तो फर्नीचर ही आ गया,
सही,
उस दुकान के रेक वगैरह बना लिए, काउंटर बना लिया,
ठीक।
अब ये फर्नीचर बेचने के लिए नहीं रखा है,
ठीक,
इस पर ज़कात नहीं हुई,
सही,
तो 10 में से 3 लाख तो वैसे चले गए,
ठीक है, माइनस हो गए,
माइनस हो गए,
ठीक है।
अच्छा, कुछ पैसे डिपॉजिट में दे दिए,
ठीक है,
दुकान का जो दुकान किराए पर ली थी, तो डिपॉजिट की जो रकम है वो बराह रास्त मालिक की मिल्कियत में मौजूद है, वो ज़कात में शुमार तो करेंगे उसको,
ठीक,
लेकिन इस काम में तो शामिल नहीं हुई ना वो,
ठीक है।
अब कुछ पैसे वो जिससे माल खरीदा
जी,
तो ज़कात 3 चीजों पर फर्ज होती है, सोना, चांदी और माल तिजारत,
ठीक है,
करेंसी जो है चांदी के हुक्म में,
ठीक है।
अब जो माल तिजारत है इस पर ज़कात फर्ज है,
सही है।
मिसाल के तौर पर काम शुरू किए हुए काफी टाइम गुजर चुका था,
सही है,
और लोट फेर भी हो चुकी है, यानी कि माल आया, माल उसके बाद बेचा, और खरीद लिया, और डाल लिया, तो अब देखा जाएगा क्या ग्रोथ में गया या नहीं गया,
ठीक है।
अगर ग्रोथ हुई है तो स्लिपिंग पार्टनरशिप जिसकी है
जी,
स्लिपिंग पार्टनर का भी हिस्सा बन गया। अगर नफा बिल्कुल नहीं होता तो जो मुदारिबत में जो इन्वेस्टर है
जी, कैपिटल
का माल है, तो
ठीक है।
जब ग्रोथ होगी तो ग्रोथ होने में जो प्रॉफिट हुआ, अब जो वर्किंग पार्टनर है उसका भी शेयर आ गया,
ठीक,
तो फिर वो भी अपने हिसाब में उसको शुमार करेगा, तो थोड़ा सा पेचीदा है, इतना मुश्किल नहीं है,
ठीक है जी। मुझसे आपने तफसील बयान कर दी, और कॉल की तरफ बढ़ते हैं, कॉल शामिल है, सिलसिला करते हैं जी।
मोहम्मद फारूक अत्तारी, हिंद कर्नाटका के शहर कोलार से बात कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहिब की बारगे में सवाल ये था, जब हम कोई चीज लेने जाते हैं क्या दुकानदार से उसकी असल कीमत मालूम कर सकते हैं?
ये आदत होती है कि जी तुम्हें कितने की पड़ी है। अच्छा, बाजू का दुकानदार खुद भी बता रहे होते हैं कि जी मुझे तो खुद ये चीज इतने की पड़ी है, तो मैं आपको
4,000 की बता के 400 में दे रहे होते हैं, फिर
ऐसा भी हो जाता है।
देखिए, अखलाकन ये मायूब सवाल है,
पूछना भी मायूब।
कुछ सवाल ऐसे हैं जो मायूब तस्वर किए जाते हैं,
ठीक है।
आपकी सैलरी क्या है,
ठीक है,
आपकी बहनें कितनी है,
ठीक है,
हमारे माशरे में बहुत मायूब सवाल है ये,
ठीक है।
इसी तरीके से आपको कितने की पड़ी है, ये मायूब सवाल है,
ठीक।
तो देखना चाहिए कि मैं क्या सवाल कर रहा हूँ,
ठीक।
हर शख्स की एक प्राइवेसी होती है,
ठीक।
ऐसे सवाल नहीं किए जाएंगे जिसका ताल्लुक प्राइवेसी से है,
ठीक।
तो ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए, बोलन तो ये है,
ठीक है।
हाँ, बाज़ औक़ात कुछ ऐसी डीलिंग होती है कि दुकानदार के लिए शरण
जी
बताना जरूरी होता है कि मैंने इतने की खरीदी है,
ठीक।
रूटीन में ऐसी डीलिंग नहीं होती,
ठीक है।
भाई, एक दोस्त आया किसी के पास, कहने लगा कि देखो भाई मैं एक माल खरीद रहा हूँ और उस माल पर जो है वो इतना नफा हो जाएगा,
ठीक है,
मैं माल खरीद रहा हूँ इतने का, मैं इतने रख के आपको बेच दूंगा, अभी बेचा नहीं उसने, बातचीत चल रही है,
ठीक है,
और आपको भी ना वो इतने का पड़ेगा और आप बेचोगे तो इतना आपको नफा मिल जाएगा,
ठीक है।
तो वो डीलिंग जिसमें दुकानदार अपनी कीमत बताकर बेचे उसे बै मुराबहा कहते हैं,
ठीक,
और ये इन्वेस्टमेंट का एक तरीका शरीयत ने बताया है,
ठीक।
जब आप किसी साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी को अपने साथ मिला रहे हैं, वह मुराबा बेहतरीन मोड ऑफ ट्रेडिंग है,
ठीक,
कि भाई ये चीज मुझे इतने की पड़ रही है लागत बताकर,
ठीक,
और मैं आपको इतने की बेचूंगा, फिर आप आगे जो मर्जी करें,
ठीक।
तो यहाँ जरूरी हो जाएगा,
ठीक।
लेकिन रूटीन की जो लाइफ है उसमें ऐसा नहीं होता, आप परचून की दुकान पर जाएं और ये पत्ती का डब्बा बताओ आपको कितने का पड़ा है
जी, तो बड़ा अजीब सर,
ऐसा नहीं है,
ठीक है जी। आखिरी सवाल शामिल करेंगे।
मेरा सवाल ये है कि टैक्स के लेने और देने के मामला तो वो कैसे शरई कैसे
है? मुझसे यहाँ पे एक चीज और शामिल कर दूं, हमारा वक्त अगर मुख्तसर है, वो ये कि जो ज़कात का सवाल एक आया था, उस वक्त मेरे जहन में सवाल आ रहा था, लेकिन अब बिल्कुल वो लगता है कि इसके साथ कर लेना चाहिए। एक ताजिर ने सवाल किया ओकाड़ा में कि टैक्स जो होता है, बाज़ औक़ात हमें ऐसे लगता है कि जी टैक्स बहुत ज्यादा लग गया है, तो क्या उसमें ज़कात दे सकते हैं? ये इन्होंने टैक्स का पूछा, और एक ये
टैक्स की मद में ज़कात
जी,
मतलब
यानी ज़कात की रकम से टैक्स पे कर दें,
मतलब ज़कात की रकम गुरबा को नहीं देनी है
जी।
अस्तग़फ़िरुल्लाह। देखिए बात है समझने की
जी,
पेट्रोल की कीमत आज अगर हुकूमत कहती है कि जी 10 रुपए बढ़ गई बिलफर्ज
जी,
तो पेट्रोल पंप वालों को नुकसान होगा?
नहीं होगा।
उसको क्या नुकसान होने,
उनको
उसने तो जो अपना मार्जिन रखा वो ले लेना है
जी, बिल्कुल ऐसे ही आगे कस्टमर को तो बढ़ा के ही देना।
नुकसान तो कस्टमर का होगा ना
जी।
तो जो चीज मार्केट में बिक रही है
जी,
टैक्स इसमें इंक्लूड है। जो चीजें बाहर से आती हैं सेल टैक्स उस पर लग जाता है, उसकी अदायगियां हो जाती हैं
जी।
जो दुकानदार माल बेचता है वो टैक्स शामिल करके रेशो निकाल के माल बेचता है
जी, ऐसे ही।
अब वो ये चाह रहा होता है कि मुझे और बचे,
ठीक है, यानी प्रॉफिट में मजीद इजाफा हो,
और इजाफा हो,
ठीक है।
और ये भी जरा मैं डंडी मारूं, चोरी करूं, ओवर इन्वेस्टिंग करूं, अंडर इन्वेस्टिंग करूं, और मुझे और बचत हो,
ठीक है,
तो उसको तो नुकसान तो नहीं हो रहा होता। हालांकि
ठीक है,
अगर एक चीज महंगी पड़ती है तो मार्केट में महंगी बिकती है,
ठीक है।
टैक्स रियासत की जरूरत है,
ठीक है,
रियासत का जितना भी निजाम चलता है वो टैक्स पे चलता है,
ठीक है।
फिर मुल्क के कानून है,
ठीक,
मुल्क के कानून जब काबिल गिरफ्त हो और जब उस पर सजाएं हो तो शरीयत भी कहती है कि उस पर अमल करना वाजिब है,
ठीक।
अमल नहीं करेंगे अपने आप को जिल्लत पर पेश करेंगे, तो टैक्स जो है वो सबको अदा करना चाहिए,
ठीक।
अब हम कहते हैं जनाब यूरोप जो है वो फ्लाई रियासत है और वहाँ हर बेरोजगार का वजीफा बंधा हुआ है और जनाब वहाँ हर आदमी को दवाइयाँ मिलती हैं, तो भाई वो टैक्स देखें कितना देते हैं,
ठीक, टैक्स का रेशियो ज्यादा है,
40% 60% टैक्स दे रहा होता है वहाँ पर,
ठीक।
तो रियासत की जरूरत है, लेकिन जो रियासती महकमों में जो लोग काम करते हैं
जी,
वो भी काबिल मुआवजा है,
ठीक है।
अगर वो इस कौम का पैसा गलत इस्तेमाल करेंगे,
ठीक,
जाया करेंगे, खुर्द बुर्द करेंगे, करप्शन में लगाएंगे,
ठीक,
तो कयामत के दिन की गिरफ्त होगी,
ठीक,
उन पर तो दोहरा बोझ है,
सही।
एक तो रियासत का नुकसान किया उन्होंने
जी,
दूसरा जो लोगों का पैसा था वो उन्होंने जाया किया है,
ठीक,
तो वो जवाबदेह होंगे कयामत के दिन,
ठीक है। हमारे जो सिलसिला है उसका वक्त इख्तिताम को पहुंचा है, देखते रहिए मदनी चैनल, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो बना।